नमस्कार श्रोता, मार्गदर्शक कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। ये कार्यक्रम अंग्रेजी और हिंदी बोलने वाले सभी श्रोताओं के लिए है। आज जब हम मार्गदर्शक कार्यक्रम के अंतर्गत विश्वास की यात्रा अर्थात जर्नी ऑफ फेथ की श्रृंखला को शुरू करने जा रहे हैं, तो आप अपने रेडियो के ही पास रहिए, सुनिए और आशीष पाइए। मार्ग ऊंचा नीचा है, कांटों से भरा है, जोखिमों से भरा है, मुझे जाने से भय लगता है, परंतु महान विश्वास प्रतिज्ञा को स्मरण करता है। तेरे जूते लोहे और पीतल के होंगे, और जैसे तेरे दिन वैसी ही तेरी शक्ति होगी, और इसलिए वह साहस में आगे बढ़ता है। जी हाँ श्रोताओं, मैं बात कर रही हूँ एक विश्वासी की। तो क्या आपका परमेश्वर पर कभी ना डगमगाने वाला विश्वास है? और इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन को सुने, इस मधुर संगीत रचना को सुनकर अपने मनों को तैयार करें।
मुझको मसीह पहुंचाता है, हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता, प्रभु आप राजाओं के राजा, अल्फा और ओमेगा परमेश्वर, हम आपके आभारी हैं कि आपने हमें अपने अध्ययन में शामिल होने के लिए एक बार फिर से ये सुंदर अवसर दिया। प्यारे प्रभु, हमारी विनती है आज जब हम आपके दास अब्राहम के जीवन के बारे में और उसके विश्वास के बारे में देखने जा रहे हैं, आप हमारी सहायता करें। हमारे सभी श्रोता मित्रों के लिए विनती है, आप दया करें कि सब अब्राहम के जीवन के द्वारा अपने जीवन को जांच सकें और आपके वचन के द्वारा से देख सकें कि कैसे उन्हें अपने जीवन के द्वारा आपकी इच्छा को पूर्ण करना है। हमारी विनती है कि आप हमारे साथ हों, अपनी उपस्थिति को हमारे मध्य में बनाए रखें और अपने वचन के द्वारा से हमें सिखाएं कि हम आपकी इच्छा को कैसे पूर्ण करें। धन्यवादी हैं कि आपने इस कार्यक्रम के साथ हमारे श्रोता मित्रों को और हमें जोड़ा है और लगातार आप हमारी अगुवाई करते हैं। धन्यवाद देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।
Listening friends,
नमस्कार मेरे श्रोता मित्रों।
If you are joining us for the first time, we are in the midst of a study about the life of Abraham.
अगर आप पहली बार इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम अब्राहम के जीवन पर अध्ययन के मध्य में हैं।
In our last broadcast, I promised that I would tell you more about Abraham between the age of 86 and 99.
पिछले प्रसारण में मैंने वादा किया था कि मैं आपको अब्राहम की आयु 86 से 99 के बीच के समय के बारे में कुछ और बताऊंगा।
And that age was between the end of chapter 16 and the beginning of chapter 17 in the book of Genesis.
और उसकी आयु का ये समय 16 अध्याय के अंत और 17 अध्याय के आरंभ में है।
And there is absolutely nothing recorded in the Word of God.
और इस समय के बारे में परमेश्वर के वचन में कुछ नहीं लिखा है।
Only those words.
केवल वो शब्द।
Verse 16.
16 पद।
Abraham was 86 years old when Hagar bore him Ishmael.
अब्राहम 86 वर्ष का था जब हाजिरा के द्वारा उसे इश्माएल उत्पन्न हुआ।
Then in verse 1 of chapter 17.
17 अध्याय के एक पद में।
It says that when Abraham was 99 years old, the Lord appeared to him and said, I am God Almighty, walk before me and be blameless.
इसमें लिखा है, जब अब्राहम 99 वर्ष का हुआ, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, तू मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा।
If you have your Bibles with you, I want you to mark in your Bibles.
अगर आपके पास आपकी बाइबल है तो इस पर निशान लगा लें।
There is a 13-year period of silence between Genesis 16 and Genesis 17.
उत्पत्ति 16 और 17 अध्याय के बीच में 13 साल की खामोशी है।
The Bible does not tell us why there is such a long silence.
बाइबल हमें कुछ नहीं बताती कि यहाँ इतनी लंबी खामोशी क्यों है।
Please understand what I'm trying to tell you.
कृपया समझें जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ।
This is only my own conjecture.
ये केवल मेरा अपना अनुमान है।
There was nothing important during those 13 years that was worth recording.
उन 13 सालों में कुछ नहीं हुआ जिसे लिखा जाना जरूरी था।
And in the same way,
और उसी प्रकार
there is nothing significant that happens in your life when you are out of the will of God.
आपके जीवन में कुछ विशेष नहीं घटता जब आप परमेश्वर की इच्छा से बाहर होते हैं।
When Abraham and Sarah tried to interpret the will of God by what seems to be natural,
जब अब्राहम और सारा ने परमेश्वर की इच्छा की स्वाभाविक रीति से व्याख्या करने की कोशिश की,
they marched right out of fellowship with God.
तो वो सीधे परमेश्वर की संगति से बाहर हो गए।
The moment they marched out of the will of God,
और जिस समय वे परमेश्वर की इच्छा से बाहर हो गए,
Ishmael was born and their spiritual growth was stumped.
इश्माएल उत्पन्न हुआ और उनका आत्मिक विकास थम गया।
This is the second time we see Abraham wandering into a period of spiritual stagnation.
ये दूसरी बार है जब हम अब्राहम को आत्मिक ठहराव की स्थिति में भटकते हुए पाते हैं।
Do you remember when did Abraham get out of the will of God the first time?
क्या आपको याद है कि पहली बार अब्राहम परमेश्वर की इच्छा से बाहर कब निकला?
Since I started making conclusions about the 13-year period of the time in the life of Abraham, I might as well continue.
जबकि मैंने अब्राहम के जीवन से इन 13 सालों के समय पर निष्कर्ष निकालने शुरू किए हैं, तो मैं इसे जारी रखूंगा।
During that time period,
उस समय के दौरान,
most likely Abraham became more successful than ever.
शायद अब्राहम ने पहले से ज्यादा उन्नति की।
Most likely his influence in the community became great.
और शायद समाज में उसका प्रभाव और बढ़ गया।
Most likely his reputation of being a hero for rescuing Lot made him an important citizen.
संभव है कि लूत को बचाने के कारण बनी एक नायक की छवि ने उसे एक प्रख्यात नागरिक बना दिया।
But most of all, Abraham thought everything between him and the Lord was just great.
पर सबसे ज्यादा अब्राहम की सोच थी कि उसके और परमेश्वर के बीच में सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक था।
He probably thought that after he helped God fulfill his promise,
शायद उसने सोचा कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा पूरी करने में उसकी मदद के बाद,
He is living a perfect life of a gentleman farmer.
वो एक सज्जन किसान की तरह एक सिद्ध जीवन जी रहा है।
No hassles,
कोई समस्याएं नहीं।
No testing,
कोई परीक्षाएं नहीं।
No family crisis,
कोई पारिवारिक संकट नहीं।
No financial crisis,
कोई आर्थिक संकट नहीं।
Abraham probably was thinking that God must be pleased with me.
अब्राहम शायद सोच रहा था कि परमेश्वर मुझसे प्रसन्न है।
Everything must be a-okay because the waters of life were smooth.
सब कुछ ठीक ही है क्योंकि जीवन के जल शांत हैं।
My dear friend, I want you to listen very carefully to what I'm going to tell you.
मेरे प्रिय मित्र, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप उसे बहुत ध्यान से सुने।
The times when the waters of life are smooth,
वो समय जब जीवन के जल शांत होते हैं,
it is a time when you should be concerned about your relationship with the Lord.
यही वो समय होता है जब आपको परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते पर ध्यान देना चाहिए।
Abraham failed to recognize that smooth waters do not always mean that God is pleased with him.
अब्राहम ये समझने से चूक गया कि अगर जीवन के जल शांत हैं तो इसका अर्थ हमेशा ये नहीं है कि परमेश्वर उससे प्रसन्न है।
Sometimes when the waters of life are smooth,
कई बार जब जीवन के जल शांत होते हैं,
it could mean that spiritual stagnation has just set in.
तो इसका अर्थ ये हो सकता है कि आपके जीवन में आत्मिक ठहराव ने प्रवेश कर लिया है।
The hours when you are struggling and facing a crisis after a crisis and you feel that you are learning by feeling the wind at your face.
वो समय जब आप संकट पे संकट का सामना करते हुए संघर्ष करते हैं और आप सोचते हैं कि इससे आप सीख रहे हैं।
These are often the times when you and I are growing the most.
तो यही वो क्षण हैं जिनमें आप और मैं अधिक बढ़ रहे होते हैं।
God does not necessarily want comfortable Christians.
परमेश्वर को आरामदायक मसीहियों की आवश्यकता नहीं है।
Read Acts chapter 13.
प्रेरितों के काम 13 अध्याय को पढ़ें।
And you will see how the apostles, in spite of harassment, were filled with joy and with the Holy Spirit.
आप देखेंगे कि सताव और संकट के बाद भी किस प्रकार प्रेरित लोग आनंद और पवित्र आत्मा से भरे हुए थे।
When circumstances seem to be easy and comfortable,
जब परिस्थितियाँ आरामदायक और आसान लगती हैं,
it can mean that spiritual progress is at a standstill.
तो इसका अर्थ हो सकता है कि आत्मिक उन्नति थम गई है।
And I think that the main reason for Abraham's peace of mind during those 13 years,
मुझे लगता है कि उन 13 सालों में अब्राहम के मन की शांति का कारण
was the fact that he lived with a false premise.
वो झूठा आश्वासन था जिस पर उसने अपना जीवन जिया।
He thought that Ishmael was the fulfillment of God's promise.
उसने सोचा कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा इश्माएल के उत्पन्न होने से पूरी हो गई।
And the Lord had to reprogram Abraham out of his self-satisfaction.
और फिर परमेश्वर को अब्राहम को उसकी आत्मसंतुष्टि की अवस्था से बाहर लाने के लिए पुनः तैयार करना पड़ा।
The Lord had to reorient Abraham to the painful truth.
परमेश्वर को अब्राहम की दिशा फिर से एक दर्दनाक सत्य की ओर मोड़नी पड़ी.
The Lord had to reintroduce Abraham to the big picture.
परमेश्वर को अब्राहम को एक बड़ी तस्वीर से पुनः परिचित करवाना पड़ा.
So on Abraham's 99th birthday, God pays him a visit.
तो अब्राहम के 99वें जन्मदिन पर परमेश्वर उससे भेंट करने आते हैं.
Now, if you are keeping records, you would have noticed that it had been 24 years since God had given Abraham the promise in Genesis 12.
अब अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो आपने जान लिया होगा कि 12 अध्याय से लेकर जहां परमेश्वर ने अब्राहम को प्रतिज्ञा दी थी अब तक 24 साल बीत चुके हैं.
But here in 17:1, for the first time God identifies himself as El Shaddai.
पर यहां 17 अध्याय के एक पद में पहली बार परमेश्वर अपने आप को एल शहदाई के रूप में प्रकट करता है.
In other words, he is saying to Abraham, I did not need your improvising, I only needed your obedience.
दूसरे शब्दों में वो अब्राहम को ये कह रहा है कि अब्राहम मुझे तेरे काम चलाऊ प्रबंध की जरूरत नहीं थी, मैं बस तेरी आज्ञाकारी चाहता था.
Then he commands Abraham, walk before me and be blameless.
फिर वो अब्राहम को आज्ञा देता है, तू मेरे सन्मुख चल और सिद्ध होता जा.
You might ask, why has God given this command to Abraham?
आप पूछेंगे कि परमेश्वर ने अब्राहम को ऐसी आज्ञा क्यों दी?
God is saying to Abraham, do not keep on making the same mistake over and over and over again.
परमेश्वर अब्राहम से कह रहा है कि एक गलती को बार बार न दोहराता जा.
There is a note of comfort here for all of us.
यहाँ हम सब के लिए ये चैन का एक संक्षिप्त विवरण है.
God's promises are never affected by our failure.
परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर हमारी असफलताओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता.
Our failure is painful for us.
हमारी असफलता हमारे लिए दर्दनाक होती है.
Our failure stunts our spiritual growth.
हमारी असफलता हमारी आत्मिक उन्नति को रोक देती है.
Our failure hurts those around us.
हमारी असफलता से हमारे आसपास के लोगों को चोट पहुंचती है.
But thank God, his promises remain the same.
परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसकी प्रतिज्ञाएं वैसी की वैसी ही बनी रहती हैं.
Here we are, we find Abraham at 99 and Sarah at the age of 90.
यहाँ हम पाते हैं कि अब्राहम 99 साल का और सारा की आयु 90 साल की हो गई है.
And God is about to renew his work in their lives.
और परमेश्वर फिर से नए रूप में उनके जीवन में अपना कार्य करने वाला है.
He changed the name of Abraham to Abraham.
उसने अब्राम का नाम बदलकर अब्राहम कर दिया.
And he changed Sarah's name from Sarai to Sarah.
और उसने सारे का नाम बदलकर सारा रख दिया.
Not only that,
यही नहीं,
but he is about to bless them with a son of their own.
पर वो अब उन्हें उनके अपने एक पुत्र से आशीषित करने वाला है.
Don't ever think that you are too old to accomplish great things for God.
ये कभी ना सोचें कि परमेश्वर के महान काम को करने के लिए आप बहुत बूढ़े हो गए हैं.
I don't mean having babies at an old age.
मेरा मतलब बूढ़ी अवस्था में बच्चे उत्पन्न करने से नहीं.
But you could have spiritual children at any age.
पर ये कि आत्मिक बच्चे आप किसी भी उम्र में उत्पन्न कर सकते हैं.
Even if you are physically unable to get around, you can pray and intercede better than most people.
अगर आप शारीरिक रूप से इधर उधर जाने में सक्षम नहीं हैं, तो आप प्रार्थना कर सकते हैं और बहुतों से अच्छी मध्यस्थता कर सकते हैं.
I want you to look very carefully at the first 8 verses of chapter 17 of the book of Genesis.
मैं चाहता हूं कि आप उत्पत्ति की पुस्तक के 17 अध्याय के पहले 8 पदों को बहुत ध्यान से देखें.
While God is talking to Abraham about the fulfillment of his promise of a child by his supernatural intervention.
जब परमेश्वर अब्राहम से अपने अलौकिक हस्तक्षेप के द्वारा बच्चे के लिए अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने की बात कर रहा है.
Abraham was thinking all of the time about Ishmael.
तो अब्राहम हर समय इश्माएल के बारे में ही सोच रहा था.
But not until you get to verses 15 and 17 that you realize what is happening here.
पर जब तक आप 15 और 17 पद पर नहीं पहुंचते, नहीं समझ पाते कि यहाँ क्या हो रहा है।
God is telling Abraham, I will do the impossible.
परमेश्वर अब्राहम से कह रहा है, मैं असंभव कार्य करूंगा।
The Lord was thinking of Sarah as well.
परमेश्वर सारा के विषय में भी सोच रहा था।
All of a sudden, Abraham probably stopped halfway through his thought and says, "What?"
और अचानक ही अब्राहम शायद अपनी सोच के मध्य में रुक कर कहता है, क्या?
No, you don't really mean that, God.
नहीं, परमेश्वर आपका वो मतलब नहीं है।
You have already given me a son by Sarah through Hagar.
आपने तो मुझे पहले ही सारा का पुत्र हाजिरा के द्वारा दे दिया है।
Lord, Ishmael is already born. Surely he is the boy you want.
प्रभु, इश्माएल तो पैदा हो चुका है और यकीनन यही आपकी इच्छा वाला बच्चा है।
Have you ever thought that you have heard the Lord when you basically have heard the voice of your desire?
कभी आपने सोचा है कि आपने परमेश्वर की आवाज को सुना है, जबकि वास्तव में आपने अपनी इच्छा की आवाज सुनी है?
Have you ever thought you were in the will of God when you were actually doing what you want to do?
कभी आपने सोचा है कि आप परमेश्वर की इच्छा में थे, जबकि वास्तव में आप वही कर रहे थे जो आप करना चाहते थे?
Have you ever been convinced about something to be the will of God, then you face a rude awakening that it was not the Lord at all?
क्या कभी किसी विषय को लेकर आप पूर्ण रूप से आश्वस्त हुए कि ये परमेश्वर की इच्छा है और बाद में पता चला कि इसमें तो परमेश्वर बिल्कुल भी नहीं था?
Poor old Abraham.
बेचारा बूढ़ा अब्राहम।
Now every bit of human wheeling and dealing for the past 13 years are going up in smoke.
अब पिछले 13 सालों का मानवीय संतुष्टि का हर टुकड़ा धुएं में उड़ा जा रहा है।
Why do you suppose God waited for so long?
आप क्यों सोचते हैं कि परमेश्वर ने इतना लंबा इंतजार किया?
Because geriatric maternity wards are not commonplace.
क्योंकि वृद्ध अवस्था प्रसूति अस्पताल कोई आम जगह नहीं है।
And often God works when the very last human possibility has been exhausted.
और परमेश्वर ज्यादातर तब कार्य करता है जब अंतिम मानवीय संभावना भी खत्म हो जाती है।
Only when you come to the end of your tattered rope that he leads you and hands you a silken cord.
तभी जब आप अपने उधड़े हुए रस्से के सिरे पर पहुंच जाते हैं, वो परमेश्वर आपकी अगुवाई कर एक रेशम की डोरी आपको पकड़ा देता है।
Only when your small boat begins to sink in the middle of the ocean that he would invite you aboard a large ship.
जब आपकी छोटी सी नाव एक महासागर के बीचों बीच डूबना शुरू कर देती है, तो वो आकर आपको बड़े से जहाज पर चढ़ने का निमंत्रण देता है।
For 13 years, Abraham pinned his hope on Ishmael.
13 साल तक अब्राहम ने अपनी आशाएं इश्माएल पर गड़ाई रखी।
But now his heart is throbbing with heartache.
पर अब उसका दिल दर्द के कारण छटपटा रहा है।
And probably to soften the blow, in verse 21, God said.
और शायद इसी को कम करने के लिए 21 पद में परमेश्वर ने कहा,
My covenant I will establish with Isaac when Sarah will bear you a child at this time next year.
परंतु इजहाक ही के साथ मैं अपनी वाचा बांधूंगा जो सारा से अगले वर्ष के इसी नियुक्त समय में उत्पन्न होगा।
We have come to the end of our time with you in this broadcast.
अब हम आपके साथ इस प्रसारण के अपने अंतिम समय में पहुंच गए हैं।
Please tune in next time. And we will learn more about what this visit from the Lord meant.
कृपया अगले प्रसारण को भी सुनें, जिसमें हम अब्राहम के साथ परमेश्वर की इस भेंटवार्ता के विषय में और सीखेंगे।
Until then, I wish you God's richest blessing.
तब तक मैं परमेश्वर से आपके लिए भरपूर आशीषों की कामना करता हूँ।
आशा है श्रोता कि ये कार्यक्रम सुनकर आपने भी अपने विश्वास को उसकी नींव से पक्का बनाया होगा। यदि आप हमारे इस कार्यक्रम के विषय में या प्रभु यीशु मसीह के विषय में अधिक जानना चाहते हैं, तो कृपया इस पते पर लिखें या संपर्क करें। हिंदी में हमारा पता है, कार्यक्रम मार्गदर्शक, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। अंग्रेजी में हमारा पता है, प्रोग्राम मार्गदर्शक, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक के लिए नमस्कार।